अच्छा, उसके बाद जो है ना हमारे पास है एक्स्ट्रा मेमरी पेजिट्स डिज़ीज़। तो पेजिट डिज़ीज़ तो हमें ये पता है कि पेजिट्स डिज़ीज़ जो है ना वो ब्रेस्ट के ट्यूमर के अंदर होता है और ये जो है ना निपल एरिया को इन्वॉल्व करता है। ब्रेस्ट के अलावा जो बाकी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं स्किन के, जिनके अंदर रिच एपोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होता है ना, वहाँ पे भी ये ट्यूमर प्रेजेंट होता है जिसको हम एक्स्ट्रा मेमरी पेजिट्स डिज़ीज़ कहते हैं। अब कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर ये एपोक्राइन ग्लैंड रिच होते हैं? वो हमारे पास है वल्वा, पेरिएनल एरिया या जेनिटेलिया कह रहे हो, मेल और फीमेल्स में, फीमेल्स में वल्वा में और पेरिएनल एरिया इन द मेन, आईलिड्स, ईयर्स और एक्सेला में रेयरली। ठीक है, तो ये ट्यूमर्स इन्हीं ही एरियाज़ में प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट कॉमनली जो इसकी साइट है ना वो वल्वा है इन द फीमेल्स, और मेल्स में जो है ना पेरिएनल एरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एज प्रेसिडेंस इसकी जो है ना वो आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज होती है, फीमेल्स में पोस्ट मीनोपॉजल, और मतलब 65 ऑनवर्ड्स इसका, मतलब ये इसका हाईएस्ट एज इंसिडेंस है और मोर कॉमन इन द फीमेल्स है, लेकिन मेल्स में भी प्रेजेंट होता है। फिर एक्स्ट्रा मेमरी पेजिट्स डिजीज़ को हम ना दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वो होता है जिसमें इसकी कॉज अननोन है और ये बेसिकली ओरिजिनेट ही करता है विद इन दी एपिडर्मस, एपोक्राइन डक्टल सेल से ओरिजिनेट करता है या प्लूरिपोटेंट केराटोमिनोसाइट स्टेम सेल से ओरिजिनेट करता है। अगर ये सेकेंडरी हो तो उसका मतलब है कि ये प्री एग्जिस्टिंग कोई भी एडिनोकार्सिनोमा हो बॉडी में, वहाँ से ओरिजिनेट करता है, या तो डायरेक्ट इन्वेजन से करता है या फिर मेटास्टेसिस की वजह से करता है। अब ये एडिनोकार्सिनोमा कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है, स्टमक में, वल्वा, रेक्टम, यूरेथ्रा, ब्लैडर, कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये फिर हमारे पास सेकेंडरी एक्स्ट्रा मेमरी पेजिट्स डिजीज़ होगा। पहले हम इसके क्लिनिकल फीचर्स डिस्क्राइब कर लेते हैं। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स में इसमें यह बताया गया है कि जो है ना वल्वा में या फिर पेरिएनल एरिया में हमारे पास एक वेल मार्जिनेटेड, ऑल दो जो मैंने डर्मनेट से पढ़ा है ना उसमें लिखा हुआ है कि इल मार्जिनेटेड, पुअरली डिफाइंड, इरेगुलर इसके मार्जिन होंगे, लेकिन रुक्स में ये लिखा हुआ है कि इसके जो है ना वेल डिफाइंड मार्जिन होते हैं और ये एक रेस्ड सा प्लाक होता है जिसका पिंक या रेड कलर, रेड सा कलर होता है। अब इसके ऊपर स्केलिंग भी हो सकती है, वीपिंग इरोजन्स भी मिल सकते हैं विच में लीड टू क्रस्टिंग। उसके अलावा इसके अंदर ल्यूकोप्लेकिया या फिर हाइपर पिगमेंटेशन भी हो सकती है, ये इसकी डिफरेंट अपीयरेंस है। ठीक है, अब वो हर साइड से जो है ना हर साइड पे डिफरेंट होगी। फिर उसके बाद ये बताया कि जो कॉमनेस्ट एरिया मैंने बताया कि वल्वा है, उसके अलावा मेल्स में पेरिएनल एरिया में फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट होता है, और फिर अपनी इन ओरिजिनल साइट से ना ये एक्सटेंड करता है, यानी कि थाइस पे चला गया, पीनस और स्क्रोटम पे इन्वॉल्व हो गया, वल्वा के अंदर चला गया, वजाइनल इंट्रोइटिस में और रेक्टम के अंदर। ठीक है, ये एक्सटेंड करता है। इनिशियली इसकी जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो ये है कि बर्निंग पेन और इचिंग कर सकता है, तो इचिंग की वजह से एक्सफोलिएशन होती है और उस पर हमारे एक्सफोलिएटेड मार्क्स नज़र आते हैं और लाइकिनिफिकेशन मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद ये है कि जब हम इनिशियली किसी पेशेंट को देखते हैं ना तो हमें ये लगता है कि या तो ये एक्जिमा है, तो इस वजह से उसको एक्जिमा के लिए ट्रीट करते हैं, लेकिन 4 to 6 वीक्स ट्रीटमेंट के बाद भी वो पेशेंट इम्प्रूव नहीं कर रहा होता, जो हम एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टीरॉइड्स वगैरह दें उसको, तो वो ये पेशेंट इम्प्रूव नहीं करेगा और उसका लेशन जो है ना वो एक्सटेंड करता जाएगा और उसके मतलब ये लेशन परसिस्ट करेंगे। देन वी विल थिंक अबाउट सम अदर डायग्नोसिस, या फिर बाकी जो उसके डिफरेंशियल्स हैं डीडीज में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्ड नहीं करा होगा और फर्दर एक्सटेंड करा होगा, थाइस में, पीनस, क्रोटम को इन्वॉल्व करेगा, वल्वा में चला जाएगा, रेक्टम में चला जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये है कि जैसे मैंने बताया था कि जो सेकेंडरी वाला है ना वो कहीं इट कैन ओरिजिनेट फ्रॉम द एडिनोकार्सिनोमा इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, तो इस वजह से उसके अंदर हमें लिम्फोडेनोपैथी भी मिल सकती है। ठीक है, और बाकी जो सिस्टमिक मैनिफेस्टेशंस होते हैं ना मैलिग्नेंसी की वो भी मिल सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो है ना इसमें यह है कि डीडीज़ में हमारे पास सबसे टॉप पे आएगा एटॉपिक डर्माटाइटिस या एक्जिमा, इंट्राटाइगो प्रूराइटिस वल्वी, ठीक है, फ्लेक्जुरल सोराइसिस, बोवन डिजीज़, सुपरफिशियल एससीसी, सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलेनोमा और पेजिटॉइड स्प्रेडिंग बोवन डिजीज़, ये सारे इसके डीडीज हैं। ठीक है, उसके फिर हर की जो है ना अपनी जो अपीयरेंस है, जैसे कि अगर एक्जिमा है तो वो क्या करेगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट से रिस्पॉन्ड कर लेगा, और इसके अंदर इटोपी की हमें हिस्ट्री मिलेगी, और जो भी लीजन होगा ना वो बाइलेटरली सिमेट्रिकली होगा, जबकि इसमें जो है ना एसिमेट्रिकल और इरेगुलर मार्जिन के साथ होता है। जो फ्लेक्चरल सोराइसिस है ना वो भी इसी तरह बाइलेटरल होगा, सिमेट्रिकल होगा और स्केली नहीं होगा, जबकि स्केली होता है। जो बोवन डिजीज़ होगा ना वो ज़्यादा इंड्यूरेटेड होगा, और एससीसी और बीसीसी में भी इसी तरह उसके इरेगुलर मार्जिन होंगे, ठीक है, और थोड़ा सा जो है ना इंड्यूरेटेड होगा, ज़्यादा डीप होगा। तो इस तरह हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें प्रॉब्लम हो रही हुई तो उसमें फिर हम बायोप्सी और डर्मोस्कोपी कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी जो डिज़ीज़ कोर्स एंड प्रोग्नोसिस है वो ये है कि डिपेंड करता है कि प्राइमरी है या सेकेंडरी है, और उसका डेप्थ ऑफ इन्वेजन कितना है। अगर तो लोकल है तो फिर उसमें लोकलाइज्ड है तो फिर उसमें हम जो है ना मोज माइक्रोग्राफिक सर्जरी विद वाइट मार्जिन्स कर सकते हैं, और उसके बाद उस पेशेंट को फॉलोअप कर सकते हैं। लेकिन अगर वो एडिनोकार्सिनोमा से ओरिजिनेट है और उसके अंदर जो है ना एज ऑफ द पेशेंट भी अबव 60 है, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है, सीईए काफ़ी रेस्ड है, तो ये पुअर प्रोग्नोस्टिक मार्कर्स है। तो मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले सर्जरी है, जिनमें सर्जरी हुई है और हम लोकल रिकरेंस को प्रिवेंट करना चाहते हैं उसमें एडजंक्ट हम रेडियोथेरेपी कर सकते हैं, या वो पेशेंट्स विच कैन नॉट अंडरगोइंग सर्जरी उसमें हम रेडियोथेरेपी कर सकते हैं। अदर देन दिस जो है ना हम क्या कर सकते हैं कि फोटोडायनामिक थेरेपी इट ऑल्सो हैज़ गुड रिजल्ट्स रिसेंटली, लेकिन इसमें जो है ना हमें प्रोलॉन्ग्ड ज़्यादा टाइम के लिए फॉलोअप करना पड़ेगा पेशेंट का। जो लोकलाइज्ड डिजीज़ है और इतना ज़्यादा डेप्थ ऑफ इन्वेजन नहीं है, उसमें टॉपिकल इमिक्विमोड क्रीम 5-फ्लोरोयूरोसिल भी यूज़ कर सकते हैं, और जैसे मैंने पहले बताया कि रेडियोथेरेपी को हम यूज़ कर सकते हैं ईदर विद और विदाउट सर्जरी। पर पैथोलॉजी में इसमें ये बताया हुआ है कि इसके अंदर जो है ना वो जो ट्यूमर है वो ओरिजिनेट करता है एपिडर्मस के अंदर ही, तो बेसल सेल्स के साथ ये ग्रो करना शुरू करेगा और फिर पूरे एपिडर्मस को इन्वॉल्व कर लेगा। इसके अंदर हाइपरकेराटोसिस पेराकेराटोसिस मिलेगी, साइटोलॉजिकली टाइपिया मिलेगा, सेल्स में प्लियोमॉर्फिज्म मिलेगी और क्लियर सेल मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा मार्कर्स दिए हुए हैं कि सेल्स जो है ना दे स्टेन पॉजिटिव फॉर द एसिड्स एंड न्यूट्रल म्यूकोपॉलीसेक्राइड। इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री के अंदर सेल्स विल स्टेन पॉजिटिव फॉर सीईए एंड कैम 5.2, CK7 एंड CK8 और 18। उसके अलावा कुछ और मार्कर्स भी दिए हुए हैं कि जो एपोक्राइन एपिथीलियम है ना उसका जो अपना मार्कर है वो है GCDFP15, और फ्रिक्वेंटली पॉजिटिव होता है इन दिस प्राइमरी वल्वर और पेरियनल पेजर्स डिजीज़, क्योंकि ये जो है ना है ही एपोक्राइन का ट्यूमर, तो इस वजह से इसके अंदर ये जो GCDFP15 है मार्कर इसमें पॉजिटिव मिलेगा। साइटोकेराटिन 20 विल बी नेगेटिव, और वो वाले केसेस जो कि इंट्रा एपिडर्मल वल्वल और पिनाइल स्क्रॉटल एक्सट्रीम मेमोरी पेजिट्स डिजीज़ है उसमें MUC1, MUC2 एंड MUCA5 भी पॉजिटिव मिल सकता है।